7 अक्टूबर दिन बुधवार, नमस्कार भारत के साथ, मैं फैसल मोहम्मद अली। पुलिसकर्मी के कत्ल के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में 5 युवा हिरासत में, हमले को बताया गया था आतंकवाद से संबंधित। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या कुछ है दांव पर और पार्टी दे रही है किन मुद्दों पर जोर?
साइकिल दे दिया और सड़क के गड्ढे भर दिए, इसी पे बिहार चलेगा 10 साल से। हम लोग सरकार में थे लेकिन सरकार में हमारी हैसियत तो कुछ थी नहीं।
सुनवाएंगे एक बातचीत बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के साथ। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल ने लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार, बताया हिंदुत्व से भारत को खतरा।
मैं समझती हूँ कि किसी को चुप नहीं रहना चाहिए ऐसे मौके पर, और इसलिए मैंने ये फैसला किया लौटाने का ये अवार्ड।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुख्यालय के बाहर हुई एक पुलिस कर्मचारी की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को हुई कर्टिस चेंग की हत्या को चरमपंथ से जुड़ी घटना बताया था। हमलावर इराकी कुर्द मूल का एक 15 वर्षीय किशोर था जिसे पुलिस ने हत्या के बाद मार दिया था। सिडनी में पुलिस की छापेमारी में 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने आज सुबह 16 से 24 साल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस का रवैया उन्हें बेचैन कर रहा है। रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हवाई हमलों के दौरान कई बार तुर्की के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने चेतावनी दी है कि रूस तुर्की से संबंध खराब करने के खतरे उठा रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई नेटो के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई होगी। वहीं रूसी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की ने सीरिया में हवाई अभियानों के लिए साझा सैन्य समूह विकसित करने का सुझाव दिया है, हालांकि तुर्की ने इसकी पुष्टि नहीं की है। नेटो और तुर्की ने सीरिया गृह युद्ध में रूस के दखल का कड़ा विरोध किया है। नेटो ने कहा है कि रूसी विमानों का तुर्की के हवाई क्षेत्रों में घुसना कोई भूल नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा,
ve bunu korumaya çalışanlar işte şu anda bakın Rusya'nın
इस समय रूस सीरिया में हमले कर रहा है और वहां एक हवाई अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ ही वे हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। हम इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेटो ने इसके खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है और मैं निश्चिंत हूं कि वो ऐसा करते रहेंगे। तुर्की के खिलाफ कोई आक्रमण नेटो के खिलाफ आक्रमण है। ये थे रूस के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के शब्द। फॉक्सवैगन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैटियास म्यूलर ने कहा है कि प्रदूषण स्कैंडल से प्रभावित वाहनों को अगले साल से रिपेयर के लिए वापस लिया जाएगा। एक जर्मन अखबार को दिए साक्षात्कार में म्यूलर ने कहा है कि अधिकतर प्रभावी वाहनों में मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, जबकि कुछ के इंजनों में सुधार किया जाएगा। बुर्किना फासो के अधिकारियों ने पिछले महीने हुए नाकाम तख्तापलट के नेतृत्व करने वाले जनरल के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है। प्रेसिडेंशियल गार्ड के पूर्व प्रमुख जनरल गिलबर्ट डिंडेरे पर कत्ल, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने समेत 11 आरोप लगाए गए हैं। उन पर सैन्य ट्रिब्यूनल में मामला चलाया जाएगा। एक पूर्व विदेश मंत्री जिब्रील बासोलो पर भी मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के आरोप हैं। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं का स्वागत है बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जहां पिछले हफ्ते एक पुलिसकर्मी की सिडनी में हत्या कर दी गई थी। कर्टिस चेंग की हत्या करने वाला फरहाद जब्बार बाद में खुद पुलिस की गोली का शिकार हो गया। सिडनी पुलिस ने इस मामले को आतंकवाद से संबंधित बताया था। मंगलवार देर रात पुलिस ने इसी सिलसिले में गिरफ्तारियां की हैं। नीना बदवार सिडनी शहर में वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की और उनसे पूछा कि इन गिरफ्तारियों के संबंध में मुझे कुछ बताएं।
इन्होंने शायद 5-6 बच्चों को, बच्चे ही कहा जाएगा क्योंकि वो कुछ 15 साल से लेके 16 साल से लेके, सबसे पहले इन्होंने एक 17 साल के बच्चे को पकड़ा जो कि फेसबुक पे ही पुलिस को थोड़ा सा थ्रेट दे रहा था। तो एक पास में इलाका है मैरीलैंड, तो वो कह रहा था कि अगला पुलिस स्टेशन जो होगा, टारगेट जो बनेगा वो मैरीलैंड पुलिस का होगा। बाकी इन्होंने कुछ मस्जिद से भी एक महीने की शायद सीसीटीवी फुटेज जो है जो कि जो वहां पर जो भी प्रवचन होते हैं या जो भी बात होती है उसका भी वो मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं।
और ये बताएं नीना जी कि मूलतः जो पहला हमलावर था, जो मुख्य हमलावर जिसने कि कर्टिस चेंग पे हमला किया था, फरहाद जब्बार जिसका नाम था, कुर्द था बेसिकली, जो अभी जो गिरफ्तारियां हुई उन लोगों का ताल्लुक किसी खास मुल्क से या किसी खास एरिया से, क्षेत्र से है?
ये बच्चा तो जैसा मैं देख रही हूँ तो वो बिल्कुल ही चुप और बड़ा अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी था। उसके आसपास के बच्चे यही बड़ी हैरानी जाहिर कर रहे हैं कि ये तो कुछ बात भी नहीं करता था। और हाँ, ये जो एक प्रेयर होती है उसको जरूर अटेंड किया करता था, पर कुछ पीछे कुछ गेम्स में ये आया नहीं और चुप ही रहता था। तो हम आसपास के बच्चों ने जब उससे पूछा कि तुम गेम पे नहीं आए तो वो कहने लगा कि भी मैं असाइनमेंट कर रहा था।
नीना जी, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ये कहना है कि अधिक से अधिक जो है मुस्लिम युवा जो हैं वो उग्र इस्लाम के प्रभाव में आ रहे हैं, इसको बयान को आप किस रूप में देखती हैं और कहाँ तक तथ्य है इसमें?
मुस्लिम जो लोगों से, ये जो हमारी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जूली बिशप जो उनसे मिली है, तो इन लोगों की यही शिकायत है कि भी आप जब कुछ होता है तो हमारी तरफ ध्यान देती हैं, तो ये बहुत मार्जिनल सा फील करते हैं, स्टिग्मेटाइज फील करते हैं। पुलिस का काम है या उनके ऊपर प्रेशर भी होगा तो, बट मुस्लिम समुदाय जो है वो काफी कंप्लेन कर रहा है कि भी आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते।
वरिष्ठ पत्रकार नीना वधवार, उनसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की और पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन लोगों को सिडनी के पश्चिमी इलाके से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एक 16 साल की उम्र के बच्चे को गिरफ्तार किया गया था। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से अधिक जो हैं वो 20 साल से कम हैं, 3 और 2 जो हैं वो 20 साल से कुछ ज़्यादा उम्र के हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि वो मुस्लिम युवाओं पर उग्र इस्लाम का जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर चिंतित हैं। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। जाहिर है प्रचार जोरों पर है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए, दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में भाजपा की साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा दोनों दांव पर हैं। हमारे सहयोगी सलमान रावी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से बात की और पूछा कि उन्हें क्यों भरोसा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी।
इन 35 सालों में कोई भी भला यहाँ बिहार का नहीं हुआ है। एक फैक्ट्री नहीं लगी, एक रोजगार नहीं मिला। यहाँ के लोग आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं।
लेकिन एक बात तो है कि जो हालत थी बिहार की उससे टर्न अराउंड तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली इम्प्रूव की है।
देखिए, सड़कें तो बीजेपी के पास वो विभाग था और जितना नंद किशोर यादव कर सकते हैं उन्होंने किया था। सड़कें इम्प्रूव हुई है और सब राज्य में सड़क की चर्चा भी नहीं होती है। नागालैंड में सड़क खराब है, सिक्किम में खराब है, पूरे देश में सड़क इम्प्रूव हुई है। तो दिक्कत ये है कि सिर्फ साइकिल दे दिया और सड़क के गड्ढे भर दिए, इसी पर बिहार चलेगा 10 साल से। हम लोग सरकार में थे लेकिन सरकार में हमारी हैसियत तो कुछ थी नहीं।
आपके कभी बहुत करीब हुआ करते थे नीतीश कुमार, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में उनकी काफ़ी तारीफ की थी, ये अचानक जो है तलखियां इतनी क्यों बढ़ गई हैं?
नहीं, तलखियां नहीं बढ़ी। देखिए, बात यह है कि जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल बहुत अच्छा काम किया, जब बीजेपी साथ थी जो पहला टर्म, उसके बाद लोगों ने उनको चढ़ा दिया। कई लोग कहने लगे ये पीएम मटेरियल है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार मॉडल पिछड़े राज्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे, बिहार के लोगों के ख्वाब को उन्होंने मार डाला।
चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अब ये पहले चरण में पूरे मुद्दे गौन होकर और ये बीफ का मुद्दा उछलने लग रहा है। लालू प्रसाद यादव कुछ बयान दे रहे हैं, राज सिंह कुछ बयान दे रहे हैं, तो ये मामला जो है वो डेवलपमेंट से हटकर बिल्कुल वो दादरी वाला जो है।
देखिए, जहाँ तक सवाल है बीफ पर बयान किसने दिया, लालू जी ने दिया, तो क्या करें। अब चुनाव के अंदर जब वो कोई सवाल खड़ा करेंगे तो उस पर जवाब होगा। तो रामकृपाल यादव ने कहा कि हमें शर्म आती है कि एक यदुवंशी इस तरह की बात कर रहा है। आज तो बिहार में मुसलमान भी बीफ नहीं खाते, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि हिंदू भी खाते हैं। तो ये मुद्दा चुनाव में क्यों लाए वो? सवाल आप करेंगे तो जवाब मिलेगा।
तो अब चारों तरफ तो सब यही चर्चा हो रही है कि बीफ पे किसने क्या कहा।
क्या करें, लालू जी पर चुप हो जाए, खामोश हो जाए। आप सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। आपके हर सवाल का जवाब है।
एक आखिरी सवाल आपसे है, वो है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कि उनकी एंट्री बिहार की पॉलिटिक्स में, उनका डेब्यू हुआ है एक तरह से इस विधानसभा के चुनाव में, कितना इम्पैक्ट होगा उनका मुस्लिम वोटर्स के ऊपर या मुस्लिम्स के?
हैदराबाद की गलियों से बाहर तो डेब्यू हुआ नहीं आज तक, पूरे आंध्रा में हुआ कहीं?
महाराष्ट्र में जीता?
नहीं नहीं, वो महाराष्ट्र में, आंध्रा में हुआ क्या? जहाँ के वो हैं उस प्रदेश में हुआ। महाराष्ट्र में उनका एक दो MLA जीत गया, वो भी ट्रायंगुलर फाइट में। असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, वो सिर्फ समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। वो आए हैं यहाँ तो, हर कोई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, दम कीपा खत्म हो गई थी, कोई उसको भी जिंदा करके लड़ सकता है, और कोई निशान नहीं मिले तो निर्दलीय भी लोग लड़ सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई कैसे भी लड़े। अगर असदुद्दीन हमारा साहब, हमारे एजेंट हैं, ये लोग कह रहे हैं, तो इससे बड़ी झूठ तो कोई बात हो नहीं सकती। हम नदी के दो पार्ट हैं, हम मिल नहीं सकते, तो हमारा उनका कोई साथ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है कि वो जो नीतीश कुमार के ख्वाब में खलल डाल दे वो BJP का एजेंट हो जाता है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन। और अब बात मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल की, जिन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। नयनतारा ने एक बयान जारी करके कहा है कि सरकार भारत की सांस्कृतिक विविधता की हिफाजत करने में नाकाम रही है। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान साल 1986 में मिला था। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने नयनतारा सहगल से बात की और पूछा कि उन्होंने सम्मान लौटाने का फैसला क्यों किया।
जो कुछ आजकल हो रहा है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के नाम में, वो बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरनाक, और ऐसी बात होनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। बेचारा आदमी जो दादरी के में मारा गया, मैं समझती हूँ कि किसी को चुप नहीं रहना चाहिए ऐसे मौके पर, और इसलिए मैंने ये फैसला किया लौटाने का ये अवार्ड, क्योंकि साहित्य अकादमी का फर्ज था कि वो आवाज उठाए जब ऐसी घटनाएं हो, और वो भी चुप रहे।
तो आपको इसे लेकर अफसोस है?
मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस।
ये जो आपने आज मैसेज दिया है, इस किस तरह का संदेश इसे जाएगा आगे?
मुझे आशा तो है जरूर कि लोग मेरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और जब ऐसी घटनाएं हो तो आवाज उठाएंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए।
नयनतारा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए इन स्थितियों में?
देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है, प्राइम मिनिस्टर को अपनी आवाज उठानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए। आज तक तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा इन चीजों के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं। वो सारी दुनिया में घूमते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, यहाँ कुछ नहीं कह सके।
प्रधानमंत्री की चुप्पी आपको खलती है?
आखिर वो प्रधानमंत्री हैं, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, और अभी तक कुछ भी नहीं बोल सके ना, या नहीं बोल पाए। मैं नहीं जानती हूँ क्यों, शायद इसलिए कि जो लोग ये खतरनाक बातें कर रहे हैं वो RSS वाले हों या KLIs।
जी, आपने एक साहित्यकार के तौर पर अलग अलग दौरों को देखा है, आपने कई बार कई मुद्दों पर आवाज भी उठाई है, इमरजेंसी के टाइम भी कहा जाता है कि आप बहुत मुखर थी।
मैं इमरजेंसी के बहुत खिलाफ थी, और हाँ, मैंने बहुत जोर से आवाज उठाई थी सेंसरशिप के खिलाफ और जो सिविल राइट्स के खिलाफ, यानी सिविल राइट्स जो बिल्कुल हटा दिए गए थे गवर्नमेंट ने, उनके खिलाफ मैंने आवाज जरूर उठाई।
तो आप मौजूदा दौर को किस तरह से देख रही हैं?
अब मुझे ये डर है ना कि अगर काफी लोग इसका सामना नहीं करें और खिलाफ नहीं बोलें तो ऐसी बातें बढ़ती जाएंगी। आखिर हम लोगों को कुछ करना चाहिए ना, हम डेमोक्रेसी हैं।
तो आप ऐसे मौकों पर लेखकों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को या आम लोगों को किस भूमिका में देखना चाहती हैं?
एक तो मैं चाहती हूँ कि उनको आज़ादी मिले करने और कहने की, जो लिखना चाहे लिखें, जो सोचना चाहे सोचें, हर तरह से आज़ादी रहे इस मुल्क में। और जब नहीं होती है तो लोगों को खुद अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ये सब बदलने के लिए। मैं हर उसूल के खिलाफ हूँ अगर लोग आज़ादी से नहीं बोल सकें, अगर ऐसा मुल्क अगर इतना नैरो माइंडेड बन जाए या मुल्क की सरकार इस तरह की हो, तो हमारे लिए एक बहुत खतरनाक समय आ गया है जब लोकतंत्र भी खतरा में है।
अगर सरकार आपको किसी तरह का भरोसा, कोई आश्वासन देती है, तो क्या आप अपना पुरस्कार वापस लेंगी?
नहीं, हर हालत में मैं नहीं वापस लूंगी, और ना सरकार ऐसी कोई आश्वासन देने वाली है।
क्या आपसे कोई बातचीत की, कोई कोशिश नहीं हुई है?
मैं किसी को जानती नहीं हूँ इस सरकार में, और ना मैं ऐसे लोगों को भी जानना चाहती हूँ। हालांकि मैं ज़रूर चाहती हूँ कि कुछ डिस्कशन हो, अगर वो मंजूर करें या उनको लगे कि इससे कोई फ़ायदा हो, तो ज़रूर इन बातों पर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए।
नयनतारा सहगल कह रही थी कि वो अपना अवार्ड किसी हाल में वापस नहीं लेंगी और वो इस सरकार में किसी को न जानती हैं और न जानना चाहती हैं। और अब बात बीफ की फिर आते हैं। जैसा कि आपने शाहनवाज हुसैन को कहते हुए सुना कि बिहार के मुसलमान बीफ नहीं खाते और हिंदू कैसे खाएंगे, और जाहिर है कि अगर किसी यदुवंशी ने इस पर बयान दिया है तो वो तो और शर्मिंदगी की बात है। लेकिन इस मामले में हमें गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के पिछले दिनों काफ़ी पहले बयान को याद करना पड़ेगा। और साथ साथ आपको जैसा कि याद होगा कि नोएडा के दादरी इलाके में गोमांस खाने के संदेह में इखलाक अहमद नाम के एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से राजनीति इस मामले पर गर्म है। इस राजनीति को लेकर गायों की सेवा में जो लोग वाकई उनकी सेवा कर रहे हैं वो लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राजस्थान के जालौर ज़िले में स्थित श्री गोपाल गोवर्धन गोशाला ट्रस्ट पथमेड़ा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पथमेड़ा पंच गव्य के चेयरमैन जगदीश परिहार से बात की और पूछा कि क्या मौजूदा दौर में हो रही राजनीति से गायों का कुछ भला होगा।
ये तो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपने खुद की रोटियां सेक रहे हैं। अगर सही गाय की सेवा करनी है तो हम आपके बता दें, जब तक हम हमारे घर में पंचगव्य का उपयोग नहीं करेंगे, अपन माइक पे तो बोलते हैं गाय की जय हो, गाय के लिए टीवी पे बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, ये भैंस में बैठते हैं, उनको पूछो गाय का दूध और घी शाम को घर में काम लेते हो, वो लोग दूध तो पीते भैंस का, और माइक पे आप गाय के लिए मीटिंग में बैठ जाते हैं, बहस करते हैं लोगों से।
जितने लोग इस समय गायों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो अगर वाकई सारे लोग मिलकर सेवा करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गायों की दशा में कुछ सुधार आ जाएगा और सड़कों पर जिन गायों को छोड़ दिया जाता है जो दूध नहीं देती हैं उनका भी कुछ भला होगा?
मैं आपको कहता हूँ, जितने आदमी ये बोलते हैं अगर वो गाय की सेवा में लग जाए तो दूसरे दिन कहीं गौशाले भी नहीं रहेंगे। जितने लोग ये राजनीति करते हैं, जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, जितने लोग भैंसों में बैठते हैं, टीवी पे बैठते हैं, ये अपने घर में जब पंचगव्य का उपयोग करना चालू करते तो गाय गौशाला में छोड़ के रोड पे ही नहीं मिलेगी और गौशाला में नहीं मिलेगी। किसान को अगर दूध का मूल्य पूरा मिल जाए वो गाय क्यों छोड़ेगा? अगर किसान को गोमूत्र का पैसा पूरा मिले तो गाय क्यों छोड़ेगा? बिना दूध देने वाली गाय भी वो अपने घर रखेगा, जब अपन वो गोमूत्र से बना हुआ फिनाइल या कुछ और भी हम हमारे घर में काम लेंगे।
आपको क्या लगता है कि गायों की दशा हिंदुस्तान में कैसे बदल सकती है, सुधर सकती है?
गायों की दशा जब भी बदल सकती है, हम खुद ये प्रण करें कि मैं मेरे घर की तरफ से या मैं मेरे परिवार की तरफ से एक गोमाता की सेवा करूंगा, तो 40 से 50 साल बाद में प्रभु गाय की सिर्फ पूजा के लिए फोटो मिलेगी, गाय नहीं मिलेगी।
कह रहे हैं कि जो हालात है उसमें 40-50 साल के बाद गाय की सिर्फ तस्वीरें मिलेंगी पूजा के लिए, गाय नहीं मिलेगी।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
अब पीना की मछली,
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और अब दिलनवाज पाशा अखबारों की पुलंदे के साथ मौजूद हैं। दिलनवाज, ये बताइए कि अखबार क्या कह रहे हैं?
जी, आज के सभी अखबारों में जो प्रमुख खबर है वो है दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, 4 गुना तक उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है, विशेषज्ञ दल ने प्रस्ताव दिया है। और इसी पर हिंदुस्तान लिखता है दिल्ली के विधायक आम आदमी से 10 गुना ज्यादा वेतन पाएंगे,
मतलब खास आदमी हो जाएंगे।
जी बिल्कुल। और दैनिक जागरण लिखता है विधायकों की होगी दिवाली, और दैनिक भास्कर कहता है कि 2,10,000 रुपये प्रति महीना होगा विधायकों का वेतन, तो अलग अलग अखबारों ने इस पर अलग अलग सुर्खियां बनाई हैं। और एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर वो है उत्तर प्रदेश पुलिस, महेश शर्मा संगीत सोम, ये बीजेपी के नेता हैं और कई अन्य नेताओं पर धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है, और इसी को शीर्षक बनाया है नवभारत टाइम्स लिखता है राजनेताओं पर उंगली, यानी राजनेताओं पर उंगली उठाई जा रही है। हिंदुस्तान लिखता है महेश शर्मा पर केस की तैयारी, और जिस खबर का हमने भी जिक्र किया, प्रसिद्ध साहित्यकार नयनतारा सहगल ने जो ज्ञानपीठ पुरस्कार लौटाया है वो लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर खबर है। कई ने नयनतारा से बातचीत भी प्रकाशित की है। और प्रधानमंत्री का बयान युवा नौकरी नहीं अपना कारोबार चाहते हैं, ये जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा, ये भी अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है। जिक्र करना चाहूँगा जनसत्ता के चुनावी सर्वेक्षण का, ये जो स्पष्ट रूप से बताता है कि बिहार में एनडीए को बढ़त मिल रही है। इन्होंने वोट प्रतिशत के आधार पर ऐसा किया है। जनसत्ता और द इंडियन एक्सप्रेस के लिए किए गए लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को 42% और महागठबंधन को 38% वोट मिलेंगे, जबकि अन्य को 20% वोट मिल सकते हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि यदि सितंबर के अंत में चुनाव हुए होते तो।
और अब सुनते हैं कि आज किन किन मुख्य खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी एमएसएफ आज जिनेवा में प्रेस सम्मेलन करेगा। अफगानिस्तान के कुंदूज में एमएसएफ के एक अस्पताल पर हुए अमरीकी हवाई हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए थे। अमरीकी सेना ने माना है कि हमला उसकी गलती से हुआ था। एमएसएफ इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय जाँच चाहता है। यमन के दक्षिणी शहर अदन में इस्लामिक स्टेट के कथित आत्मघाती हमले में सऊदी अरब नेतृत्व के गठबंधन के कम से कम 15 सैनिक और समर्थक लड़ाके मारे गए हैं। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में शांति वार्ता की ओर बढ़ने के संकेत दिए हैं। यमन के ताजा हालातों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि वे इसराइल के साथ बढ़ रहे तनाव से बचना चाहते हैं। इसराइल ने 2 फलस्तीनी हमलावरों के घरों को जमींदोज कर दिया है। इसराइली प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो फलस्तीनी हमलावरों से सख्ती से निपटेंगे। फलस्तीन और इजराइल के हालातों पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी।
भारत में मुसलमानों की शादी और तलाक जैसे अहम सामाजिक मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ के वर्षों पुराने कानूनों के तहत तय होते हैं। बेजा तलाक और पहली पत्नी को छोड़ने जैसे मामलों में मुस्लिम महिलाओं को कोई कानूनी सुरक्षा हासिल नहीं है। असमानता का सामना करने वाली मुस्लिम महिलाएं अब मांग कर रही हैं कि सामंती दौर के मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में बदलाव किए जाएं और जबानी तलाक पर पाबंदी लगाई जाए। सुनिए हमारे सहयोगी शकील अख्तर की खास रिपोर्ट।
लखनऊ की हिना के शादीशुदा जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। अचानक उन्हें एक दिन पता चला कि उनकी तलाक हो गई है।
हम अपने घर पे थे और जब हम अपने ससुराल गए, हमारी सास ने और हमारे जो शौहर थे उन लोगों ने ये कहा कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तुम्हारी तलाक हो चुकी है। तो हमने कहा कैसे हो गई है, तो उन्होंने मोबाइल पे हमें सुनाया कि ये तुम्हारा सीखा पढ़ दिया गया है। और सुल्ताना मदारिस जो हमारा एक बहुत ही जाना पहचाना है मदरसा है, वहाँ के मौलाना ने हमें एक तरफा हमारी तलाक करा दी है।
जबानी तलाक यानी 3 बार तलाक कहकर तलाक देने और दूसरे विवाह के लिए पहली पत्नी को छोड़ने जैसे प्रश्न भारत के मुस्लिम समाज की एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। नायश हसन लखनऊ में महिलाओं के अधिकार के लिए तहरीक नामक एक गैर सरकारी संगठन चलाती हैं।
औरत को तलाक तलाक कह के निकाल देना, उसकी कोई हिफाजत नहीं होना, ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसको हम लोग काफी साल से उठा भी रहे हैं। 1937 जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, अगर आप उस पर निगाह डालें तो एकदम वो बोगस एक्ट है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुसलमानों को समझना ये है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट अल्लाह ने नहीं बनाया, वो अल्लाह का बनाया कानून नहीं है। जिसको डराया जाता है कि ये अल्लाह का बनाया कानून है, वो अल्लाह का बनाया कानून नहीं है।
भारत में मुसलमानों के शादी और तलाक जैसे मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनाए हुए वर्षों पुराने कानून के तहत तय पाते हैं। राजनीतिज्ञ शादिया इल्मी कहती हैं कि ये कानून इस्लामी नियमों से मेल नहीं खाते।
तलाक बिद्दत की आपने बात की, 3 बार तलाक की, जो मुस्लिम ममालिक हैं आप देखें वहाँ पे भी इसको बैन किया गया है, लेकिन हमारे देश में बहुत सालों बाद इस पर कोई बहस भी हुई। कोई बहस करता है तो बिल्कुल आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। इस्लाम कैसे खतरे में आ रहा है? अगर आप अपनी ही बहनों की, ख्वातीनों की, बीवी बेटियों की हिफाजत करेंगे तो इस्लाम तो मजबूत होगा। तो किस तरह का आपने इनसिक्योरिटी पैदा कर दी कि कोई सवाल ही नहीं उठा सकता।
नायश हसन का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। वो कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैर चुनी अलोकतांत्रिक और महिला विरोधी संगठन है।
पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो लॉ छोड़ के हर काम करता है, तो वो पूरी दुनिया घर घर की औरतों की चौकीदारी करने का काम, किसने फिल्म देखी, कौन कहाँ गया, पर्दा किया कि नहीं, बुरका पहना कि नहीं, ये वो कर रहे हैं। जबकि उनके सामने इतना एक कच्चा कानून पड़ा था, अब तक वो इसमें सुधार कर सकते थे और इंसाफ की बात कानून में आ सकती थी, वो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपना प्रचार प्रसार किया, अपने आप को एक सत्ताधारी کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی،
لیکن فیصلہ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس کے قانون قرآن اور اسلام کے پیغمبر کی پرمپرا کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں۔ بورڈ کے ورشٹھ سدسیہ اور پروکتا ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کا کہنا ہے کہ دقت قانون میں نہیں ہے۔
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے جو قانون ہیں، جتنے آئلی قوانین ہیں یا دوسرے دیگر قوانین بھی ہیں، وہ قرآن سنت سے مستبد ہے۔ یہ نہ تو کسی ٹرائبل دور کے بنے ہوئے ہیں، نہ زمینداروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ قرآن سنت سے وضع کیے ہوئے قوانین ہیں۔ خاص طور سے جیسے طلاق ہے اور آپ کے انہیریٹنس کا یعنی وراثت کا قانون ہے، یہ تو پورا قرآن میں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔
مسلم مہیلاؤں کے ایک سنگٹھن بھارتی مسلم مہیلا آندولن کے ایک دیش ویاپی سرویکشن کے انوسار 90% سے ادھک مہیلائیں شادی، طلاق اور مینٹیننس کے قانون میں بدلاؤ چاہتی ہیں۔ سنگٹھن کی ایک پدادھیکاری زکیہ سمن کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سنسد کے دوارا منظور کیے گئے قانون کی ضرورت ہے۔
دیکھیے، سولوشن الگ الگ چیزوں میں ہے۔ ایک لیگل ایریا ہے جہاں سولوشن ہونا چاہیے، کوڈیفائڈ مسلم پرسنل لاء ہونا چاہیے، قرآن بیسڈ۔ دوسرا، ہمارا جو سماج ہے وہاں ایک بہت بڑا ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ڈرائیو ہونا چاہیے، جہاں یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ہمیں جو گھٹی میں پلا دیا گیا ہے کہ اگر تم لڑکی ہو اور تو تم نابرابر ہو، تمہارے بھائی کے تم سے زیادہ حق ہیں، بھائی اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، نوکری کرنے جائے گا، تم لڑکی ہو تو 14-15-16 سال میں تمہارے لیے شوہر ڈھونڈ لیا جائے گا، تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ وہاں سے ہم کو ہمارے سماج کے اندر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
دھارمک سنگٹھنوں پر آدھارت مسلم پسلا بورڈ بھارت کے مسلمانوں کے نکاح اور طلاق تک کا کوئی سنیکت ماڈل ابھی تک تیار نہیں کر سکا ہے۔ مسلمان اب یہ مانگ کر رہے ہیں کہ شادی اور طلاق جیسے اہم سماجک پہلوؤں کے لیے ایسے قانون بنائے جائیں جو نہ کیول اسلامی ہوں بلکہ جو اس یگ کی لوک تانترک مانیتاؤں سے بھی میل کھاتے ہوں۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
اور اب سنتے ہیں کھیل کی خبریں۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ ان دنوں دوحہ میں دنیا بھر کے مکے باز جمع ہیں اور موقع ہے وشو مکے بازی چیمپئنشپ کے مادھیم سے اگلے سال ریو میں ہونے والے اولمپک کا ٹکٹ بھی حاصل کرنا۔ ویسے پہلا ہی دن بھارتی مکے بازوں کے لیے ملا جلا رہا۔ ایشیائی کھیلوں کے رجت پدک وجیتا وکاس کرشنن 75 کلو بھار ورگ میں اور شیو تھاپا 56 کلو بھار ورگ میں اپنا پہلا مقابلہ جیت کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، لیکن 64 کلو بھار ورگ میں منوج کمار پہلے ہی دور میں ہار کر باہر ہو گئے۔ اس چیمپئن شپ کو لے کر بھارتی مکے بازی دل کے کوچ جی ایس سندھو کہتے ہیں،
جو پہلے دو وزن ہے 49 کلو گرام اور 52 کلو گرام، اس میں صرف گولڈ اور سلور کوالیفائی کرے گا۔ 56 ویٹ کیٹیگری سے لے کر 75 تک ہیں، ان میں گولڈ، سلور اور دو برونز میں سے ایک برونز، اور برونز میں دوبارہ واپس آؤٹ ہوگا، جو جیتے گا وہی برونز میڈل کھیلے گا۔ 81 کلو گرام میں صرف گولڈ اور سلور کوالیفائی ہوگا اولمپک کے لیے، اور 91 کلو گرام میں اور پلس 91 کلو گرام میں صرف گولڈ میڈلسٹ ہی کوالیفائی ہوگا۔ تو یہ جو کوالیفائی سسٹم اس بار ہے یہ کافی ٹف ہے۔
وہیں پاکستان کے پورو کپتان شعیب ملک کی ٹیسٹ ٹیم میں 5 سال بعد واپسی ہوئی۔ انہیں انگلینڈ کے خلاف سنیکت عرب امیرات میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم میں جگہ دی گئی ہے۔ ادھر نیوزی لینڈ کا دورہ کر رہی بھارتی ہاکی ٹیم کو تب بڑا جھٹکا لگا جب اسے میزبان نیوزی لینڈ نے 2-0 سے مات دی۔ وہیں چین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں شیرش وریتا حاصل سربیا کے نوواک جوکووچ، تیسری وریتا حاصل اسپین کے رافیل نڈال اور چوتھی وریتا حاصل ڈیوڈ فیرر پروش ایکل ورگ کے دوسرے دور میں پہنچ گئے ہیں۔
اور کارکرم ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے سنتے ہیں مکھیہ سماچار دل نواز پاشا سے۔
آسٹریلیا کے سڈنی میں آج صبح پولیس چھاپے ماری میں 5 سندگھوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترکی کے راشٹرپتی ریسیپ طیب اردوان نے کہا ہے کہ روس کا رویہ انہیں پریشان کر رہا ہے۔ فاکس واگین کے نئے مکھیہ کارکاری ادھیکاری میٹیاز میولر نے کہا ہے کہ پردوشن اسکینڈل سے پربھاوت واہنوں کو اگلے سال سے ریپیئر کے لیے واپس لیا جائے گا۔ برکینا فاسو کے ادھیکاریوں نے پچھلے مہینے ہوئے ناکام تختہ پلٹ کا نیتتو کرنے والے جنرل کے خلاف اوپچارک روپ سے معاملہ درج کر لیا ہے۔ انتراشٹریہ مانوادھیکار سنگٹھن ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ سے یمن میں ہوتی ودروہیوں کے خلاف حملے کر رہے سعودی عرب گٹ بندھن کو ہتھیار نہ مہیا کرانے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کا نیائے وبھاگ سنگھیے جیلوں سے بھیڑ کم کرنے کے لیے 6,000 قیدیوں کو رہا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
اس کارکرم یعنی کہ نمسکار بھارت کا تکنیکی پکش سنبھالتا ہیمنت کشواہا نے۔ وشو بھارتی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے 1 گھنٹے میں 8 بجے۔ نمسکار۔